नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 12 जुलाई 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, चक्रवाती तूफानों से प्रभावित मोजाम्बिक की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मजबूती से हाथ बढ़ाने की अपील। दुनिया भर में देशों के भीतर और देशों के बीच व्याप्त है भारी असमानता। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की मांग और कैंसर सहित बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं की सूची में अनेक नई दवाएं शामिल की गई। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने विनाशकारी चक्रवाती तूफानों से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया है। इस साल मार्च और अप्रैल महीनों के दौरान इडाई और कैनेथ नामक दो चक्रवाती तूफानों से मोजाम्बिक में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। चरम जलवायु की परिस्थितियों से ये दो प्राकृतिक आपदाएं और घातक हो गईं। राजधानी मापूतो में यूएन प्रमुख ने एक अपील जारी कर कहा कि तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और अधिक प्रयास करने होंगे।
As Nações Unidas estiveram e estarão ao lado do povo moçambicano em todas estas fases.
पुनर्निर्माण की चुनौती से निपटने के लिए समर्थन के बाद किए गए वादों पर तेजी से अमल भी करना होगा। सिर्फ समर्थन व्यक्त भर नहीं करना है, बल्कि समय पर समर्थन देना भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आश्वासन दिया कि मोजाम्बिक यूएन एजेंसियों की प्राथमिकताओं में शामिल है और यूएन एजेंसियां राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में मोजाम्बिक सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इडाई तूफान की वजह से बेरा शहर में करीब 90% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। मोजाम्बिक में पुनर्निर्माण कार्यों में मदद के लिए हाल ही में एक संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरकार ने 3 अरब 20 करोड़ डॉलर राशि जुटाने में मदद की अपील की थी, लेकिन सम्मेलन में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के वादे ही किए गए। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बहुत से देशों के बीच और देशों के भीतर विभिन्न वर्गों व समाज के गरीब तबकों के लोगों में भारी असमानता व्याप्त है। गुरुवार 11 जुलाई को न्यूयॉर्क में जारी की गई इस रिपोर्ट को 2019 की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में 2006 से लेकर 2016 तक की अवधि यानी एक दशक का आकलन किया गया है। महबूब खान की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट में 101 देशों में अध्ययन करने के बाद आंकड़े पेश किए गए हैं। इनमें 31 देश निम्न आय वाले, 68 मध्य आमदनी वाले और 2 देश उच्च आय वाले शामिल थे। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि दुनिया भर में लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोग अनेक रूपों में गरीब हैं। इसका अर्थ है कि निर्धनता या गरीबी को सिर्फ आय के नज़रिए से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए अनेक संकेत चिन्हों का सहारा लिया जाता है, जिनमें अस्वस्थता, कामकाज के हालात का अच्छा नहीं होना और हिंसा के डर के माहौल में जीना शामिल हैं। रिपोर्ट की मुख्य बातें जानने के लिए हमने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में शोध विशेषज्ञ डॉ शिवानी नैयर से बात की तो उन्होंने बताया,
ये सिर्फ एक आर्थिक माप नहीं है गरीबी का, ये बताता है कैसे लोग रह रहे हैं, क्या वो स्वस्थ हैं, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, क्या उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी है। तो इसमें जैसे इंडिया के बारे में जो रिज़ल्ट आया है कि 2005-06 से 2015-16 तक काफ़ी गरीबी में कमी आई है। जैसे 27 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं, ये MPI गरीबी से, और सबसे पिछड़े जो क्षेत्र हैं और लोग और वर्ग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया है। जैसे झारखंड में जो MPI गरीबी है वो 75% से 46% पे आ गई है, और ये सिर्फ 10 साल के पीरियड में है, जो काफ़ी इंकरेजिंग है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा MPI गरीबी है जब हम तुलना करते हैं शहरी इलाकों से।
रिपोर्ट कहती है कि तमाम विकासशील देशों में गरीबी के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। खासतौर से सब सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब आबादी रहती है और इसकी संख्या लगभग 84% है। इन क्षेत्रों में असमानता का स्तर बहुत व्यापक बताया गया है। सब सहारा अफ्रीका में इसका दायरा कुछ इस तरह है। दक्षिण अफ्रीका में 6.3% से लेकर दक्षिण सूडान में 91.9%। दक्षिण एशिया में गैर बराबरी की दर मालदीव में अगर 0.8% है तो अफगानिस्तान में ये दर 95.9% है। तो क्या इस रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि किस तरह के प्रयास गरीबी दूर करने में ज्यादा कामयाब साबित हो रहे हैं? डॉक्टर शिवानी नैयर,
ये रिजल्ट्स 10 साल के पीरियड के लिए हैं, लेकिन ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें बताता है कि कितनी गरीबी है और किन डायमेंशंस में गरीबी है। तो ये पॉलिसीज़ उन डायमेंशंस की तरफ फोकस की जा सकती हैं, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये हमें नहीं बता सकता कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से गरीबी कम हुई है। उसके लिए अलग स्टडीज़ चाहिए और हैं, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए।
शिवानी नैयर से हमने ये भी जानना चाहा कि ये किस तरह निर्धारित होता है कि गरीबी में कितनी कमी आई है। मसलन, ये कैसे मालूम होता है कि साल 2006 में कितने लोग किस हद तक गरीब थे और 10 साल के भीतर उनके हालात में उनकी गरीबी कितनी और किस तरह दूर हुई? डॉक्टर शिवानी नैयर,
इसके लिए हम सर्वेज यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड लेवल सर्वेज, जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड हाउस होल्ड सर्वेज हैं, डेमोग्राफिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्वे DHS और भी सर्वेज हैं मिक्स, और उनमें जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो घरों में जाके और जो लेडी होती हैं घर में और बच्चे होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये तो बेसिकली जैसे इंडिया के लिए हमारे पास एक सर्वे है 2005-06 का और एक है 2015-16 का। तो हम सर्वे डेटा में जाके और अपने एस्टिमेट्स करते हैं और फिर हम तुलना कर सकते हैं कि 10 साल में कितना फ़र्क आया है।
जिन लगभग 1.3 अरब लोगों को गरीब पाया गया, उनमें से लगभग आधी से भी ज्यादा यानी करीब 66.3 करोड़ की आबादी 18 वर्ष से कम उम्र की है। लगभग 1/3 संख्या यानी करीब 42.80 करोड़ 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। इन बच्चों की बहुत बड़ी आबादी यानी लगभग 85% दक्षिण एशिया और सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र में बसती है। इस पूरी रिपोर्ट के एक हिस्से में दुनिया भर में गरीबी कम करने के प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन भी किया गया। रिपोर्ट में गरीबी कम करने के स्तर के लिए 10 देशों की पहचान की गई है जिनकी कुल आबादी लगभग 2 अरब है। इन सभी देशों में गरीबी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सबसे तेज प्रगति भारत, कंबोडिया और बांग्लादेश में दर्ज की गई।
इसी सप्ताह मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम आरंभ हुई। इस फोरम में टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों में हुई प्रगति, चुनौतियों की समीक्षा और सुधार के लिए उनसे सबक सीखने का प्रयास होगा। साल 2019 में इस फोरम की बैठक की थीम लोगों को सशक्त बनाना और सभी की भागीदारी व बराबरी सुनिश्चित करना है। एक बेहतर, ज्यादा समानता वाली दुनिया और ज्यादा स्वस्थ पृथ्वी सुनिश्चित करने के इरादे से 4 वर्ष पहले 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों का एजेंडा स्वीकृत किया गया जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। इस उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के आरंभिक सत्र में टिकाऊ विकास लक्ष्यों के बारे में संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट भी जारी की गई। रिपोर्ट बताती है कि देशों के भीतर और देशों के बीच बढ़ती असमानता पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता के बढ़ते स्तर के साथ 4वां रिकॉर्ड सबसे ज्यादा गर्म साल रहा। समुद्रों में तेजाब का स्तर औद्योगिक क्रांति से पहले के समय की तुलना में 26% ज्यादा है और अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 1990 में 36% थी जो 2018 में घटकर 8.6% पर आ गई है। लेकिन संसाधनों की कमी, हिंसक संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के प्रयासों में धीमी होती रफ्तार से ये फायदे गुम होते नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की एक नई रिपोर्ट में कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की मांग की गई है। 8 जुलाई को जारी इस रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि पिछले साल जून में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी सिफारिशें पेश की गई थी, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि 2018 में लगभग 160 आम लोगों की मौत हुई यह संख्या पिछले करीब एक दशक में सबसे ज्यादा होने की आशंका है। 2018 में ही संघर्ष संबंधी घटनाओं में 586 लोगों की मौत हुई, जो 2008 के बाद से सबसे ज्यादा संख्या थी। इनमें सशस्त्र गुटों के 267 सदस्य और सुरक्षा बलों के 159 जवान भी थे। दो सशस्त्र गुटों पर भारत प्रशासित कश्मीर में बच्चों को लड़ाई के लिए भर्ती करने और उन्हें बाल सैनिकों के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। ये भी आरोप है कि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र गुट राजनीतिक संगठनों से संबंधित लोगों पर हमले करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय करने के मामले बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसके लिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को जिम्मेदार ठहराया गया है। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने की तकनीक के रूप में बंदूकों के लगातार इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद उनका इस्तेमाल जारी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की भी पड़ताल की गई है, जहां अलग तरह के मानवाधिकार उल्लंघन बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले लोग बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। खासतौर से उन्हें अपने विचार या राय अभिव्यक्त करने, शांतिपूर्ण रूप से सभा करने या किसी संगठन की सदस्यता हासिल करने की आज़ादी नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक प्रतिपक्षियों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए आतंकवाद निरोधक कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट में कुछ खास मामलों का ब्यौरा देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में पत्रकारों को अपना कामकाज करने के लिए किस तरह धमकियों और यातना के माहौल में जीना पड़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय को ऐसी ठोस जानकारी मिली है कि किस तरह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में लोगों को जबरन गायब कर दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग सभी मामलों में पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि लोगों के इस तरह लापता होने के पीछे पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों का हाथ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आवश्यक दवाओं की सूची में अनेक नई दवाओं को शामिल करने की घोषणा की है, जिसके बाद ये दवाएं हर देश में उपलब्ध होनी चाहिए। इस सूची में नए कैंसर उपचार भी शामिल हैं, जिन्हें इंजेक्शन के जरिए लेने के बजाय आसानी से गोली के रूप में निगला जा सकता है। 150 से अधिक देश संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की आवश्यक दवाओं की सूची का उपयोग करते हैं, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण लगभग 460 दवाएं शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सूची में जोड़ी गई 5 दवाइयों को विशेष रूप से त्वचा के कैंसर, मेलेनोमा, फेफड़े, रक्त और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनमें हाल ही में विकसित इम्यूनोथेरेपी के 2 तरीकों, निवोलिमाब और प्रेम्बोलाइजुमाब भी शामिल हैं, जिनसे बुरी तरह फैल गए मेलेनोमा यानी त्वचा कैंसर के उपचार में 50% बचाव दर होने की उम्मीद जागी है। कैंसर के इस चरण में पहुंचने को पहले लाइलाज माना जाता था। इस साल की आवश्यक दवाओं की सूची के जरिए बच्चे के जन्म के बाद होने वाले खतरनाक रक्तस्राव की समस्या से भी निपटने का प्रयास किया गया है। नए प्रस्ताव के तहत फिलहाल इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीटोसिन की बजाय कार्बेटोसिन नामक दवा उपयोग में लाई जाएगी। UN एजेंसी के बयान के अनुसार ये नया नुस्खा ऑक्सीटोसिन जैसा ही असर करता है, लेकिन इसे ठंडक में रखने की जरूरत नहीं है, जो गर्म जलवायु वाले देशों के लिए खासतौर पर लाभकारी है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने अपनी आवश्यक निदान सूची में भी बदलाव किए हैं, ताकि समय रहते परीक्षणों के जरिए ये पता लगाया जा सके कि मरीज को क्या परेशानी है। पिछले साल जारी की गई पहली सूची में सीमित संख्या में HIV, मलेरिया, तपेदिक और हेपेटाइटिस जैसे प्राथमिकता वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस वर्ष की सूची में अधिक संख्या में संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के लिए परीक्षण शामिल किए गए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।